ओम नमस्ते जी। आज का विषय है ईश्वर की उपासना हम क्यों करें। महानुभाव, अध्यात्म पथ में जो आगे बढ़ना चाहता है, जीवन को चरम लक्ष्य तक जो पहुंचाना चाहता है, उसको जीवन में तीन चीजों का समानांतर प्रगति करनी है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। किसी एक की भी उपेक्षा करने से व्यक्ति की प्रगति आध्यात्मिक क्षेत्र में रुक जाएगी। प्रायः व्यक्ति एक बार स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के क्षेत्र में प्रयास ही नहीं करता। ऐसे व्यक्ति क्षिप्त चित्त की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और शिष्णोदर परायण होकर के खाओ पियो जियो संसार में भू स्तर पर अपने जीवन को परिसीमित कर देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं से ऊपर उठता है और अनुभव करता है कि नहीं, ये जीवन ठीक नहीं है, तो वो विक्षिप्त अवस्था में आकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान विज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है, परंतु अपने ज्ञान के अनुसार कर्म के क्षेत्र में वो पिछड़ता रहता है और इसीलिए उसकी अध्यात्म प्रगति आगे नहीं होती। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों शुद्ध होने चाहिए। जैसा ज्ञान है वैसा कर्म होना चाहिए। व्यवहार धरातल पर हमारे कर्म हमारे ज्ञान के विपरीत न हो, इस बात की विशेष जागरूकता हमें आत्मनिरीक्षण आदि के माध्यम से, आत्मचिंतन आदि के माध्यम से, आत्म गवेषणा आदि के माध्यम से करती रहनी चाहिए। और यदि ये दोनों क्षेत्रों में हमारी प्रगति हो रही है, यदि, तो तीसरा क्षेत्र पिछड़ जाता है। विक्षिप्त चित्त वालों में ये चीज आम देखने को मिलती है कि व्यक्ति ध्यान की उपेक्षा कर देता है। वह व्यक्ति संध्या तो कर लेगा, परंतु संध्या औपचारिकता मात्र करता है, वो मंत्र पठन मात्र तक परिसीमित होता है। मंदिर मस्जिद जाएगा, लेकिन जैसा उसको परंपरा से मिला है वो एक औपचारिक क्रिया मात्र रह जाती है। ईश्वर को मानना और उसकी पूजा अर्चना या जो कुछ भी है परंपरा से उसको प्राप्त है वो करना, वो मात्र औपचारिक रह जाता है। नहीं महानुभाव, तीसरा ध्यान बैठ करके, आसन लगा करके, प्राणायाम करके, मन इंद्रियों को रोक करके अपनी आत्मा परमात्मा की पहचान के लिए किया गया प्रयास ध्यान कहता है। और यह ध्यान उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम आज कुछ पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि यह ध्यान क्यों किया जाए, क्या इसका महत्व है, क्या इसका लाभ है, और ध्यान करने से कैसी ईश्वर के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, हमारे ज्ञान और कर्म भी शुद्ध होते चले जाते हैं और हमको यह पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, कितनी उन्नति प्रगति हमको करनी है। आइए इस संदर्भ में विचार करते हैं। पहला बिंदु है ईश्वर के उपकारों के प्रति हमें कृतज्ञ होना है। महानुभाव, ध्यान के माध्यम से हम ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। ईश्वर के हमारे ऊपर असंख्य कृपा है। ईश्वर सतत हम पर उपकार किए जा रहे हैं, अनादि काल से करते आ रहे हैं। यह सृष्टि ईश्वर हमारे लिए बनाते हैं, हम नहीं बना सकते ये सृष्टि। ना धरती हमने बनाई, हवा पानी अनाज आदि जितने भी वस्तुएं हम इस सृष्टि में से प्रयोग करते हैं, एक एक वस्तु ईश्वर ने बना के दी है और निस्वार्थ भाव से, बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं लिया। आप यही तो देखिए, मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली हर सेवा के लिए हमको मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से प्राप्त हर सेवा हमको निशुल्क मिलती है। तो ईश्वर का तो हक बनता है कि हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। और ऐसा करने से ईश्वर को कुछ लाभ होता है ये बात नहीं है, हमें लाभ होता है, लाभ हमारा है, न करने से हानि भी हमारी ही है। तो यदि हम ध्यान आदि के माध्यम से ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो अनायास ही ईश्वर के प्रति हमारा लगाव, हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति, हमारी रुचि बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमको होगी कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे और दिन भर हम ईश्वर की ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध करने में भी इससे सहायता मिलेगी। शुरुआत में व्यक्ति ध्यानस्थ होकर के इस बात का अनुभव करता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, धीरे 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 शब्दों में वो संस्कार बनने से व्यवहार काल में अनुमान प्रमाण से वो धीरे धीरे उसको विकसित करता है, और आगे चल करके जब उसके अंतःकरण की शुद्धता बढ़ती चली जाती है, उसके जीवन में से त्रुटियां दोष समाप्त होते चले जाते हैं, यम नियमों के पालन का ऊंचे स्तर से आदर्श रूप में धारण किया जाता है यम नियम आदि, और उस अवस्था में प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता है और समाधि उसकी व्यवहार काल में भी लग सकती है। महानुभाव, ये सबसे पहला लाभ कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना सीखें। ईश्वर ने संसार को निर्माण किया है, ईश्वर वेद ज्ञान का दाता है, इस बात को हम अनुभव करें। हमारे पास जितना भी सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, ज्ञान विज्ञान है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, इस बात को प्रकर्षेण अनुभव करें और इस अनुभूति में उन ईश्वर प्रदत्त कृपाओं का लाभ लें, तो हमारा जीवन धीरे धीरे ब्रह्म उन्मुख हो सकता है, हमारे अंदर ब्रह्म वर्चस्व प्रकर्षेण जागृत हो सकता है, वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। अगला बिंदु है, ईश्वर हमारा सर्वरक्षक है, परम हितैषी है। प्रायः दिन भर हम भूले रहते हैं, ये शरीर ईश्वर के द्वारा संचालित है, ईश्वर प्राणों के माध्यम से इस स्थूल शरीर में सतत कार्यरत है, हमारे लिए सेवाएं दे रहा है। प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय, हम साधनाएं करके ओम प्राण प्राण, इन साधनाओं की गहराई में जाकर के कैसे प्राण रूप में ईश्वर हमारे जीवन आधार बना हुआ है, अपान रूप में शरीर से अपशेषों का निष्कासन कर रहा है, समान रूप से खाए पिए अन्न रस को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है, व्यान रूप से पूरे शरीर में चेष्टा का आधार बना हुआ है, और उदान रूप से बल पराक्रम उत्साह आदि के लिए ईश्वर प्रेरणादायी बने हुए हैं। इस बात को यदि हम व्यवहार धरातल पर अनुभव करें ध्यान के माध्यम से, तो हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की रक्षा सतत हमको प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है। हम भले ही दिन भर भूल जाएं ईश्वर को, ईश्वर हमें नहीं भूलता। हम भले ही ईश्वर की आज्ञाओं की कितनी ही अवहेलना क्यों न कर दें मन बुद्धि इंद्रियों से, लेकिन ईश्वर अपनी ये कृपा करना नहीं छोड़ता। ये शरीर में रक्त का संचार ईश्वर की मदद से हो रहा है, खाए पिए अन्न का पाचन ईश्वर की मदद से हो रहा है, पाचित अंश शरीर का भाग बनता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं में परिणत होता है, यह ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, और शरीर के अंदर बनने वाला मल मूत्र पसीना दुर्गंध आदि जितना भी अपशेष है उसके निष्कासन, मलों के निष्कासन की प्रक्रिया भी ईश्वर के माध्यम से पूर्ण हो रही है। महानुभाव, ईश्वर कितनी बड़ी कृपा कर रहा है, सतत चहुं ओर से ईश्वर की रक्षा हमें प्राप्त है। व्यक्ति यदि इस साये में जीने का अभ्यास करे तो कितना उसका ईश्वर के प्रति लगाव, रुचि, आसक्ति, प्रेम बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रति स्नेह बन आएगा। तो ईश्वर हमारा सर्वरक्षक है और परम हितैषी है, सतत हित करने वाला है। अगली बात आती है, उपासना करने से मन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। ध्यान इसीलिए किया जाता है कि भीतर के मन इंद्रियां बुद्धि आदि पदार्थों का साक्षात किया जा सके, इनकी कार्य प्रणाली समझी जा सके और इन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। अनियंत्रित बुद्धि, अनियंत्रित इंद्रियां, अनियंत्रित मन वाला व्यक्ति फिसलन को प्राप्त होता है, गिरता है बार बार, त्रुटियों को जो है जीवन में धारण करता है, कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के अनिष्ट सोचता है, बोलता है, करता है, और जब व्यक्ति इन्हीं मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो प्रामाणिक होकर के सोचता है, प्रामाणिक होकर के बोलता है, प्रामाणिक होकर के क्रियाओं को करता है। महानुभाव, निस्संदेह मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रित जीवन हमें लौकिक समृद्धि भी देगा और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कराएगा। तो ये ध्यान से होता है, व्यक्ति ध्यान करेगा, प्रतिदिन ध्यान करेगा, ईश्वर उपासना करेगा, तो भीतर के मन, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्मतम है, और सूक्ष्मतम की उपासना करने से भीतर के मन बुद्धि इंद्रियां जो सूक्ष्मतर है उसके ऊपर पकड़ बनती चली जाती है। महानुभाव, हमने कतिपय बिंदुओं को उठा करके ईश्वर की उपासना के महत्व को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस विषय में अन्य भी बहुत सारे पहलू हैं, आपको अगली श्रव्य कर्णिका में बताने की चेष्टा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इति ओम शम।